एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार के आज के संवाद में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास की, जॉर्ज एलियट का क्लासिक द मिल ऑन द फ्लॉस।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जो आज भी बहुत प्रासंगिक है।
जॉर्ज एलियट, हाँ असली नाम तो मैरी एन इवांस था, है ना? वो विक्टोरियन इंग्लैंड की मतलब बहुत ही प्रखर बौद्धिक आवाजों में गिनी जाती थी।
बिल्कुल, और वो पुरुष नाम उन्होंने इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि उनके काम को गंभीरता से लिया जाए। उस जमाने में ये जरूरी था, वरना लोग शायद उसे बस एक महिला का लिखा समझकर खारिज कर देते।
सही का, उनकी खासियत यह है कि वो किरदारों के मन की गहराइयों में उतर जाती हैं। मतलब सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं, अंदर क्या चल रहा है।
हाँ, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद जिसे कहते हैं, और साथ ही नैतिक सवाल, इंसानी रिश्ते, वो सब बहुत गहराई से वो देखती थी।
और द मिल ऑन द फ्लॉस ये 1860 में आया। कहानी है 1820-30 के दशक की, इंग्लैंड का एक काल्पनिक कस्बा सेंट ऑग्स फ्लॉस नदी के किनारे बसा हुआ।
और कहते हैं ये एलियट का सबसे पर्सनल उपन्यास है। सुना है उनके अपने भाई के साथ जो रिश्ता था।
हाँ, आइजैक के साथ, उसकी छाप इसमें साफ दिखती है।
जी,
तो आज हम इसी उपन्यास के दिल में उतरेंगे। बात करेंगे मैगी और टॉम टुलिवर की, ये भाई बहन, उनके उलझे हुए रिश्ते की, और कैसे एक कह सकते हैं असाधारण लड़की समाज के बंधनों से टकराती है।
और क्या बड़े सवाल एलियट उठाती है इस कहानी से। तो हाँ, शुरू करते हैं सफर।
बिल्कुल, कहानी का केंद्र है डॉलकोट मिल। ये सिर्फ एक चक्की नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो टुलिवर परिवार की पहचान है, पीढ़ियों से उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, सब इसी से जुड़ा है।
और यही हमारी मुलाकात होती है मैगी से, छोटी मैगी टुलिवर।
हाँ मैगी, वो आम लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत कल्पनाशील, जज्बाती और दिमाग बिजली की तरह तेज। उसकी आंखों में एक खास बात है।
लेकिन घर वाले उसे अलग ही समझते हैं, बहुत ज्यादा सियानी, बेकाबू।
हाँ, जंगली तक कह देते हैं। उसकी समझदारी, उसकी उत्सुकता, वो लोगों को अजीब लगती है, उस उम्र के हिसाब से फिट नहीं बैठती जैसे।
और फिर है उसका भाई टॉम।
हाँ
वो बिल्कुल उलट है।
एकदम, टॉम है प्रैक्टिकल, सिद्धांतों पर चलने वाला, सही गलत, खानदान की इज्जत, इसका एक बहुत ही सख्त पैमाना है उसके पास।
और बचपन से इन दोनों के रिश्ते में एक टान है।
एक कश्मकश। मैगी हमेशा टॉम का प्यार चाहती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहती है, लेकिन टॉम वो समझ ही नहीं पाता अपनी बहन की जरूरत को।
उसे मैगी का वो जज्बातीपन, वो तेज दिमाग, वो सब खटकता है।
हाँ बिल्कुल, और बचपन की कुछ घटनाएं हैं जो इस गांठ को और मजबूत कर देती हैं, जैसे वो मैगी का बाल काट लेना गुस्से में।
अच्छा, हाँ, क्योंकि टॉम ने कुछ कह दिया था।
जी, या फिर वो टॉम के खरगोशों की मौत, जिसके लिए मैगी खुद को जिम्मेदार मानती है और टॉम उसे कभी माफ नहीं कर पाता, बिल्कुल माफ नहीं कर पाता।
हाँ, और बचपन की यही मासूम दिखने वाली घटना है।
बिल्कुल यही।
ये भाई बहन का जटिल रिश्ता जैसे वो धागे हैं जो पूरी कहानी बुनते हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उन किरदारों की नींव हैं जो आगे मुश्किल राहों पर चलेंगे।
सही कहा।
और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, यहाँ जगहें भी जैसे सांस लेती हैं, ये डॉलकोट मिल और ये फ्लॉस नदी। क्या लगता है इनका क्या महत्व है?
बहुत गहरा। मिल तो जैसे परंपरा है, स्थिरता, परिवार की जड़ें, और नदी, फ्लॉस नदी, वो तो लगातार बह रही है।
मतलब बदलाव या भाग्य की धारा।
हाँ, बदलाव भी और भाग्य का वो अनियंत्रित बहाव भी, और कभी कभी जुनून की वो ताकत जो सब बहा ले जाती है।
कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब इनके पिता मिस्टर टुलिवर अपने, कह सकते हैं, स्वाभिमान के चक्कर में वकील वेकम से भिड़ जाते हैं।
हाँ, वो पानी के अधिकारों का मसला। मिस्टर टुलिवर को वेकम से नफरत है और वो उसे सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई
महंगी पड़ती है। और इसी बीच टॉम की पढ़ाई का भी मामला है, उसे अच्छी तालीम के लिए भेजा जाता है, पर
टॉम को किताबी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे वो सब बेकार लगता है।
और यही एक और अहम मुलाकात होती है मैगी की फिलिप वेकम से।
हाँ, वकील वेकम का बेटा फिलिप जो है वो होशियार है, सेंसिटिव है, लेकिन थोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम है, और पिता की वजह से समाज में कटा कटा सा रहता है।
वो मैगी के अकेलेपन को समझता है शायद।
हाँ, और उसकी प्रतिभा को भी, जिसे कोई और नहीं देख पाता।
लेकिन मिस्टर टुलिवर की वो जिद, वो कानूनी लड़ाई, उसका नतीजा क्या होता है?
नतीजा बहुत बुरा होता है। मिस्टर टुलिवर मुकदमा हार जाते हैं, इज्जत जाती है, और सबसे बड़ा झटका, डॉरलकोट विल वेकम के हाथ चली जाती है।
ओहो, ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा।
बहुत बड़ा। और विडम्बना देखिए, वेकम उन्हें उसी मिल में मैनेजर रख लेता है, शायद और जलील करने के लिए।
ये अपमान तो मिस्टर टुलिवर सह नहीं पाए होंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार जाता है, और अपनी मौत से ठीक पहले वो टॉम से बाइबल पर हाथ रखवाकर कसम लेते हैं।
कसम? कैसी कसम?
बदला लेने की।
बिल्कुल।
से बदला, परिवार का सम्मान वापस पाने की। वो कहते उन सबको चुकाना।
बाप रे।
और बस यहीं से टुलिवर परिवार अमीरी से गरीबी में आ जाता है। सामाजिक अपमान अलग, टॉम को स्कूल छोड़ना पड़ता है,
वो बड़ा हो गया अब।
हाँ, और पिता की कसम उसके सिर पर है। वो एकदम सख्त इरादे से काम में जुट जाता है। कर्ज चुकाना है, मिल वापस लेनी है, बस यही उसका लक्ष्य बन जाता है।
और मैगी, वो अब युवती हो गई होगी।
हाँ, और वो इस माहौल में घुटन महसूस करती है। उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं, उसके सपने, इन सब के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं है। उसे लगता है जैसे जैसे वो कैद हो गई है।
इस गिरावट का असर दोनों पर बिल्कुल अलग तरह से होता है ना?
जी बिल्कुल। टॉम और कठोर हो जाता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करता है।
और यही वो थीम उभरती है, अतीत का असर, कैसे बचपन, परिवार, विरासत, ये सब मिलकर हमारी राह तय करते हैं।
सही, पिता की कसम टॉम को एक दिशा देती है, भले ही वो बदले की हो। और मैगी के लिए ये उसके अंदर के उस द्वंद्व की शुरुआत है जो आखिर तक चलता है।
कौन सा द्वंद?
फर्ज, परिवार के प्रति फर्ज, और उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी आत्मा की आवाज।
अच्छा, और इसी अकेलेपन में वो फिर से फिलिप वेकम से मिलती हैं।
हाँ, चुपके से रेड डीप्स नाम की एक सुनसान जगह पर। ये सिर्फ मिलना नहीं है, ये मन का मिलन है। फिलिप ही है जो मैगी की इंटेलिजेंस को, उसकी भावनाओं को समझता है, उसे अप्रिशिएट करता है।
वो क्या बातें करते होंगे?
किताबें, आर्ट, म्यूजिक, आइडियाज, वो सब कुछ जो मैगी को घर पर या सेंट ऑग्स में कहीं नहीं मिलता। उनका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़कर एक गहरे लगाव में बदल जाता है।
लेकिन ये गुप्त रहता है?
हाँ, जब तक कि टॉम को पता नहीं चल जाता, और जब उसे पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है।
क्यों? क्योंकि फिलिप वेकम का बेटा है।
बिल्कुल, वो इसे पिता की याद और परिवार के सम्मान से गद्दारी समझता है। वो फिलिप को बहुत बुरा भला कहता है और मैगी पर दबाव डालता है कि कसम खाए कि वो फिलिप से फिर कभी नहीं मिलेगी।
और मैगी?
मैगी का दिल टूट जाता है, लेकिन भाई का हुक्म, परिवार का फर्ज, वो उस पर हावी हो जाता है। वो रोते हुए टॉम के सामने झुक जाती है, अपनी वो खुशी कुर्बान कर देती है।
यही मैगी का वो केंद्रीय संघर्ष, ड्यूटी वर्सेस डिजायर, बहुत साफ दिखता है ना?
हाँ बिल्कुल। फिलिप सिर्फ एक दोस्त या प्रेमी नहीं था, वो उसकी बौद्धिक जरूरत भी पूरी करता था, एक सहारा था।
और टॉम यहाँ सिर्फ भाई नहीं लग रहा, वो जैसे उस समय के समाज के सख्त नियमों का प्रतीक है।
सही कहा, उसका प्यार भी शर्तों पर है। मैगी अगर आज्ञा मानेगी तभी उसे टॉम की स्वीकृति मिलेगी।
क्या इसमें सिर्फ परिवार के सम्मान की बात है या कहीं कहीं भाई की जलन भी है कि मैगी को वो दिमागी खुशी मिल रही है जो उसे खुद नहीं मिलती?
ये कि समाज मैगी जैसी बुद्धिमान लड़की को कैसे देखता है, एक खतरे की तरह।
उसकी बुद्धिमत्ता लड़कियों वाली नहीं मानी जाती।
बिल्कुल नहीं। और इसी उथल पुथल में मैगी कुछ समय के लिए एक किताब पढ़ती है, थॉमस ए कैंपिस की द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट।
अच्छा, उसमें उसे क्या मिलता है?
उसमें त्याग का दर्शन है, इच्छाओं को दबाना, चुपचाप दुख सहना, इसी में शांति है। वो कोशिश भी करती है इस पर चलने की, खुद को मिटाने की।
लेकिन क्या वो कर पाती है?
पूरी तरह नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो आग दब तो जाती है कुछ देर के लिए, पर बुझती नहीं।
तो कहानी आगे बढ़ती है, कुछ साल बीतते हैं।
हाँ, और टॉम अपनी मेहनत से परिवार का कर्ज चुका देता है, हालात कुछ बेहतर होते हैं। मैगी अब एक बहुत ही खूबसूरत युवती है,
और वो अपनी कजिन लूसी डीन के घर जाती है रहने।
जी, लूसी का घर एक अलग दुनिया है, अमीर, सोफिस्टिकेटेड। लूसी की सगाई भी हो चुकी है स्टीफन गेस्ट नाम के एक हैंडसम, अमीर, लेकिन थोड़े अहंकारी लड़के से।
और यहाँ मैगी की मुलाकात फिर फिलिप से होती है।
हाँ, और लूसी जो बहुत नेक दिल है, वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। उसे लगता है मैगी और फिलिप एक दूसरे के लिए बने हैं।
तो क्या सब ठीक हो जाता है? टॉम मान जाता है?
ऐसा लगता है कुछ देर के लिए, लगता है कि शायद मैगी को फिलिप के साथ खुशी मिल ही जाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है।
क्या?
मैगी और स्टीफन गेस्ट लूसी के मंगेतर के बीच एक जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाता है।
अरे,
ये तो अनपेक्षित है।
हाँ
बिल्कुल, अनकंट्रोलेबल दोनों तरफ से, और दोनों के लिए शॉकिंग। वो लड़ते हैं इससे, अपनी वफादारी याद करते हैं लूसी को, फिलिप को, लेकिन वो खिंचाव बहुत मजबूत होता है। ये कश्मकश बढ़ते बढ़ते एक नाव की सैर पर अपने चरम पर पहुंचती है। स्टीफन एक आवेग में नाव को बहुत दूर ले जाता है।
उसका इरादा क्या है?
मैगी के साथ भाग जाने का।
मैगी हैरान है, कंफ्यूज्ड है, जैसे वो भावनाओं के इस तूफान में बहती जा रही है। वो रोकती है पर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं।
फिर रात हो जाती है, उन्हें एक अनजान शहर में रुकना पड़ता है। तब मैगी को पूरा होश आता है। स्टीफन उससे शादी की नई जिंदगी की मिन्नतें करता है।
और मैगी क्या करती है?
वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी खुशी दूसरों के, खासकर लूसी और फिलिप के दुख पर नहीं बना सकती। वो अकेले सेंट ऑग्स लौटने का फैसला करती है नतीजा भुगतने के लिए।
ये तो बहुत बड़ा फैसला है। इसे ही उपन्यास का ग्रेट टेम्पटेशन कहते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, ये मैगी के चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। स्टीफन क्या है? वो आसान जिंदगी, वो पैशनेट लव, वो सोशल एक्सेप्टेंस है जिसकी मैगी को शायद तलाश थी।
लेकिन उसकी नैतिक कीमत बहुत ज्यादा है।
जी, और मैगी वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं। वो जानती है कि सेंट ऑग्स में बदनामी मिलेगी, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है। वो पर्सनल हैप्पीनेस पर अपनी मॉरल ड्यूटी को चुनती है।
ये चुनाव फिर से उसी सेंट्रल थीम पर ले आता है, इच्छा बनाम कर्तव्य।
हाँ, और एलियट यहाँ जुनून की ताकत भी दिखाती हैं, कितना आकर्षक पर कितना खतरनाक भी। मैगी का ये फैसला नैतिक रूप से तो बहुत ऊंचा है, पर दुनिया की नजरों में
उसे गिरा देता है और उसे बिल्कुल अकेला कर देता है।
हाँ, और उसका अकेले सेंट ऑग्स लौटना एक सामाजिक भूचाल ला देता है। सेंट ऑग्स का समाज वो अपने संकीर्ण दायरों में जीता है।
वो उसे क्या समझते हैं?
बिना पूरी बात जाने उसे फौरन गिरी हुई औरत मान लिया जाता है। अफवाहें उड़ती हैं कि उसने अपनी ही कजन के मंगेतर को फंसाया, उसके साथ भागी।
कोई उसकी बात नहीं सुनता।
कोई नहीं, बदचलन, घर तोड़ने वाली, क्या क्या नहीं कहा जाता। लोग कानाफूसी करते हैं, दोस्त रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं।
और टॉम, उसका क्या रिएक्शन होता है?
वो सबसे ज्यादा कठोर साबित होता है। उसने अब मिल वापस खरीद ली है, वो परिवार का मुखिया है। वो मैगी को घर में घुसने से मना कर देता है।
अपने ही भाई ने?
हाँ, वो उसकी कोई सफाई नहीं सुनता। कहता है तुमने टुलीवर खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया।
ये तो बहुत ही भयानक है।
इस अकेलेपन में उसे सिर्फ शहर के पादरी डॉक्टर केन थोड़ी पनाह देते हैं। वो नेक इंसान है, मैगी पर यकीन करते हैं, लेकिन वो भी उसे समाज के जहर से पूरी तरह नहीं बचा पाते।
तो मैगी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है।
हाँ, कई हफ्ते वो ऐसे ही बहिष्कृत जीवन जीती है। और फिर आता है उपन्यास का क्लाइमैक्स, बाढ़।
फ्लॉस नदी में बाढ़।
हाँ, भयानक बाढ़। नदी जो अब तक चुपचाप बह रही थी, वो जैसे कहर बनकर टूट पड़ती है। सेंट ऑग्स, डॉलकोट मिल, सब डूबने लगते हैं।
और इस तबाही में
मैगी वो करती है जिसकी शायद किसी को उम्मीद न हो। उसे पता चलता है टॉम मिल में फंसा है। वो एक नाव लेकर
उसे बचाने निकलती है उन लहरों में।
हाँ, उफनती लहरों से लड़ती हुई जब वो मिल पहुंचकर टॉम को नाव में लेती है, उस मौत के सामने उनका सालों का झगड़ा, कड़वाहट, सब जैसे एक पल में पिघल जाता है।
सुलह होती है।
हाँ, टॉम शायद पहली बार अपनी बहन के प्यार की गहराई देखता है। वो उसे उसके बचपन के नाम मैगजी से पुकारता है। एक पल के लिए वो फिर से जुड़ जाते हैं।
लेकिन
ये मिलन बस एक पल का होता है। पानी में बहता हुआ कोई भारी मलबा उनकी नाव से टकराता है और नाव पलट जाती है।
ओह नो।
दोनों भाई बहन एक दूसरे की बाहों में उस बाढ़ में समा जाते हैं। आखिरी लाइन है, अपनी मृत्यु में वे अविभाजित थे।
दिल दहला देने वाला अंत है, लेकिन अविस्मरणीय भी। ये बाढ़, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सिर्फ विनाश?
शायद विनाश से ज्यादा, शायद एक तरह का शुद्धिकरण। प्रकृति की वो ताकत जिसके सामने इंसानी झगड़े, मान अपमान सब छोटे पड़ जाते हैं।
और वो क्षमा और न्याय का सवाल, टॉम का वो बदला लेने वाला न्याय बाढ़ के सामने कितना बेमानी लगता है।
बिल्कुल, बाढ़ जैसे सारी पुरानी शिकायतों को धो डालती है।
और अंत की इस ट्रेजेडी में क्या एक अजीब सी शांति भी है? क्या उन्हें मौत में वो मिला जो जिंदगी में नहीं मिला?
कह सकते हैं। एलियट शायद यहाँ प्रेम की अकथनीयता की बात कर रही हैं। वो गहरा प्यार जो उन्हें था, पर जिसे वो कभी ठीक से कह नहीं पाए, जता नहीं पाए,
वो शायद उस आखिरी आलिंगन में ही जाहिर हुआ।
हाँ, शायद।
तो अगर हम संक्षेप में देखें, द मिल ऑन द फ्लॉस हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इच्छा और कर्तव्य का संघर्ष।
अतीत का असर, बचपन के रिश्ते, परिवार की विरासत,
समाज के बंधन, खासकर महिलाओं के लिए
न्याय, क्षमा, बदला
और सबसे बढ़कर प्रेम की जटिलता, भाई बहन का वो गहरा पर उलझा हुआ रिश्ता।
एलियट की लिखने की शैली, वो सर्वज्ञ नरेटर जो मन में झांकता है, और नदी और मिल जैसे प्रतीक, ये सब मिलकर इसे एक महान उपन्यास बनाते हैं।
जी हाँ, तो आखिर में मैगी की ये कहानी आज हमें क्या सिखाती है, व्यक्तिगत आत्मा और समाज के दबावों के बारे में?
शायद ये याद दिलाती है कि बचपन के बंधन कितने गहरे होते हैं और कैसे अक्सर सच्ची समझ और बातचीत की कमी प्यार भरे रिश्तों में भी दुख भर देती है।
और ये भी कि समाज अक्सर उन लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करता जो लीक से हटकर सोचते या जीते, खासकर महिलाओं को।
बिल्कुल।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए आएकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।